राम की जय। जय गुरु प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके। श्रीमद्भागवतम स्कंद अध्याय दो श्लोक क्रमांक 27। एको यनो स्वद्विफल त्रिमूला एकायनो स्वद्विफल त्रिमूला चतुरस पञ्चविध षडात्मा चतुरस पञ्चविध षडात्मा सप्तत्वगष्टवितपूर्णवाक्षो सप्तत्वगष्टवितपूर्णवाक्षो दत्तादिद्विखदोरादिवृक्षः दत्तादिद्विखगोहारिवृक्षः एकायनो स्वद्विफलस्त्रिमूला चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगश्च वितपूर्णवाक्षो दशस्कलिद्विखगोहादिवृक्षः एकायनो स्वद्विफलस्त्रिमूला चतुरस पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टवितपूर्णवाक्षो दशास्वनिवेखगोरादिवृक्षः लोग में आए हुए शब्द इस प्रकार है, एक अयन सामान्य जीव का शरीर भौतिक तत्व पर पूरी तरह आश्रित है, असो वह द्विफल इस शरीर में हमें सुख या दुख मिलते रहते हैं, जो कर्मों के प्रतिफल होते हैं। त्रिमूला तीन जड़े वाली प्रकृति के तीन गुण सत्व रजो तथा तमो जिससे शरीर बनता है। चतुरस चार रस या चार आस्वादन, पंचविध ज्ञान प्राप्त करने की पांच इंद्रियां, आंख कान नाक जीभ तथा स्पर्श से युक्त षड आत्मा छह परिस्थितियां, शोक मोह जरा मृत्यु भूख प्यास सप्त स्वयं सात आवरण त्वचा रक्त पेशी जय श्री राधा की जय भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। सात आवरण प्रसाद रक्त पेशी वसा अस्थि वजा तथा वीर्य वाला अष्ट वितप आठ शाखाए पांच फूल पृथ्वी जल अग्निवायु और आकाश तथा मन बुद्धि एवं अहंकार नव अक्ष नौ दरवाजे दस शरीर दस प्रकार की प्राणवायु जो वृक्ष के पत्ते के सदस्य है द्विखग दो पक्षी आत्मा तथा परमात्मा हे न संदेह आदि वृक्ष यह वृक्ष आदि या शरीर की बनावट है। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। शरीर को अलंकारिक रूप में आदि वृक्ष कहा जा सकता है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है और उसमें भी दो प्रकार के सुख भोग के तथा दुख भोग के फल लगते हैं। उसके तीन जड़े तीन गुण हैं सतो रजो तथा तमो के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप है। शारीरिक सुख रूप फलों के स्वाद चार प्रकार के हैं, चार प्रकार के होते हैं धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष जो पांच ज्ञान इंद्रिय द्वारा छह प्रकार की परिस्थितियां शोक मोह जरा मृत्यु भूख तथा प्यास में अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष के छाल में सात परतें होते हैं त्वचा रक्त पेशी वसा अस्थि मंजा तथा वीर्य। इस वृक्ष के आठ शाखाएं हैं जिनमें से पांच फूल त्वचा तथा तीन सूक्ष्म तत्व है स्थिति पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि तथा बुद्धि मन और अहंकार। शरीर रूपी वृक्ष में नौ छिद्र कोठार हैं आँख कान मुथुने मुह गुदा तथा जनेन्द्रिय जिसमें दस पत्ते हैं जो शरीर के निकलने वाले दस वायु हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी हैं एक आत्मा तथा दूसरा परमात्मा। तात्पर्य यह शरीर पांच प्रधान तत्व स्थिति जल पावक समीर तथा सुगंध से बना हुआ है। यह सारा तत्व कृष्ण से उद्भूत है तथापि भौतिकतावादी विज्ञानी इन पांच मूल तत्वों को भौतिक जगत का कारण मानते हैं किंतु ये तत्व स्थूल या सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न होते हैं जिनकी तटस्था शक्ति से भौतिक जगत में जीव भी उत्पन्न होते हैं। भगवद गीता में सप्तम अध्याय में बतलाया गया है कि समग्र विश्व कृष्ण की दो शक्तियां परा तथा अपरा शक्तियों का मेल है। सारे जीव पराशक्ति है और निर्जीव तत्व उनकी अपरा शक्ति है। सुषुप्तावस्था में हर वस्तु कृष्ण पर टिकी रहती है। भौतिक वैज्ञानिक शरीर की भौतिक रचना का ऐसा पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर पाते। भौतिक वैज्ञानिक केवल निर्जीव पदार्थ का विश्लेषण करते हैं किंतु यह पर्याप्त है क्योंकि जीव भौतिक शारीरिक संरचना से पूर्णतया भिन्न होता है। भगवद गीता में सात पांच में भगवान कहते हैं अपरेयम प्रसिद्वा प्रकृति वृद्धम ये पराम जीव भूता महाबाहो ये धार्यति जगत। इस प्रकृति के अतिरिक्त यह महाबाहु अर्जुन मेरी एक परा प्रकृति है जिसमें भौतिक प्रकृति के संघर्ष करने वाले तथा विश्व को धारण करने वाले सारे जीव पाए जाते हैं। यद्यपि सारे भौतिक तत्व भगवान कृष्ण से उद्भूत होते हैं किंतु वे भिन्न तत्व है और जीवित तत्वों द्वारा धारण किए जाते हैं। द्विखग शब्द से सूचित होता है कि शरीर के भीतर ये जीवित तत्व वृक्ष में बैठे हो दो पक्षियां हैं, पक्षी के समान है। ख का अर्थ है आकाश तथा ग का अर्थ है गमन करने वाला। द्विखग दो पक्षियों का रोतक है। इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी अर्थात दो सजीव तत्व है और वो दोनों सदैव पृथक पृथक होते हैं। भगवद गीता 13:3 में भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ सापि माम वृद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत तुम यह भी जान लो कि मैं सारे शरीरों का ज्ञाता हूँ, क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का स्वामी भी खग अर्थात जीव कहलाता है। शरीर के भीतर ऐसे दो क्षेत्रज्ञ हैं आत्मा तथा परमात्मा। आत्मा अपने शरीर का स्वामी है किंतु परमात्मा सारे जीवों के शरीर के भीतर उपस्थित रहता है। शारीरिक संरचना का ऐसा सम्यक विश्लेषण तथा ज्ञान वैदिक साहित्य में अत्यधिक दुर्लभ है। जब दो पक्षियां किसी वृक्ष में प्रवेश करते हैं तो मूर्खतावश को यह सोच सकता है कि दोनों पक्षी एक हो गए या वृक्ष में तदांतर हो गए, किंतु ऐसा नहीं होता। प्रत्युत्तर यह पक्षी की अपनी व्यक्ति निजी पहचान बनी रहती है। इस तरह आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं होते, न ही पदार्थ से उनका तादात्म्य होता है। जीव सदैव पदार्थ के निकट रहता है किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि वह उससे एकाकार हो जाता है। असंगो हाय पुरुष। यद्यपि भौतिक विज्ञानी जीव तथा अजीव या जड़ तथा चेतन को गलती से मिला हुआ मानते हैं, वैदिक ज्ञान को बंदी अथवा गुप्त रखा गया है किंतु हर व्यक्ति को उसे समझने की आवश्यकता है। अज्ञान की आधुनिक सभ्यता केवल शरीर का विश्लेषण करने में व्यस्त है, अतः लोग इस गलत परिणाम को प्राप्त होते हैं कि शरीर के भीतर ही जीवनी शक्ति उन्हीं भौतिक अवस्थाओं के उत्पन्न होती है। लोगों को आत्मविषय कोई जानकारी नहीं है किंतु इस श्लोक में पूरी पूरी व्याख्या दी हुई है कि जीव की शक्तियाँ दो हैं, देखग आत्मा तथा परमात्मा। परमात्मा हर शरीर में उपस्थित है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जबकि आत्मा केवल अपने ही शरीर में देही स्थित है और एक शरीर से दूसरे में स्थानांतर करता रहता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन आत्मने श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकान्तन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यः च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराणम् श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी रूपं बुधिर्यास्त अहं प्रपद्ये। सूर्यशतसमकान्ति अरुणवसन सुबलिप्रकाण्ड देह कमललोचन। हरे कृष्णा सभी भक्तों को इस भागवत सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भानामृत संघ द्वारा स्थापित नित्यम भागवत सेवया क्रम के अनुसार दसवां स्कंध दूसरा अध्याय जो देवताओं के द्वारा स्तुति प्रारंभ हुई है, ये आज का श्लोक है। 26 नंबर का श्लोक प्रथम श्लोक था आज देवताओं द्वारा स्तुति का, और आज का द्वितीय श्लोक है स्तुति का। जो सारे देवताओं यहाँ तक ब्रह्मा शिव जी नारद व्यास अशीत प्रभुपाद दिखते हैं, देवर सभी ऋषि मुनियों देवताओं और भगवान शिव के साथ उस कारागार में गुप्त रूप से जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आविर्भाव हुए हैं, उस कारागार में गुप्त रूप से स्तुति देवताओं द्वारा की गई है। जो मथुरापुरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है वैकुंठ जना मधुपुरी वरा, जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी श्री रूप गोस्वामी कहते हैं। क्योंकि उस वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ साक्षात भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, आविर्भूत हुए हैं भगवान कृष्ण, इसलिए वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी कहते हैं रूप गोस्वामी। तो इस मधुपुरी में कंस के कारागार में देवताओं द्वारा स्तुति अद्भुत स्तुति है 17 श्लोक में। जो प्रश्लोक हमने कल श्रम किया जिसमें भगवान को सत्य कहकर देवताओं प्रार्थना करते हैं, 9 बार उस श्लोक में सत्य सत्य आया है, वो महत्वपूर्ण श्लोक था वो। और साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि उस श्लोक में भगवान को पूर्ण रूप से सत्य रूप में प्रकाशित किया है देवताओं द्वारा, और उसे विपरीत यह श्लोक है। जो कल प्रथम श्लोक था ठीक उसका विपरीत श्लोक है ये। सब लोग ये भावार्थ से सुने शब्दार्थ से सुने, जो उस श्लोक में जो प्रथम श्लोक में देवताओं ने भगवान कृष्ण की पूर्ण रूप से प्रशंसा और सत्यता प्रस्तुत की है, और इसी श्लोक में जीवात्मा का देह का जो जीव देह धारण करते हैं उनका दूसरे द्वितीय श्लोक में ही उसका वर्णन देवताओं करते हैं। आश्चर्य की बात है इस स्तुति में ऐसा कहीं नहीं पाया जाता कि प्रथम भगवान का गुणगान फिर तुरंत दूसरे श्लोक में इस जीवात्मा का शरीर का वर्णन। यदि भी कहीं स्तुतियाँ हैं श्रीमद् भागवतम में, लेकिन भगवान का गुणगान पराय पाया जाता है शुरुआत से अंत तक। कहीं कहीं श्लोकों में थोड़ा बहुत उल्लेख होता है जीवात्मा का या इस शरीर का, लेकिन ये देवताओं द्वारा अद्भुत स्तुति जो प्रथम भगवान का गुणगान प्रस्तुत करते हैं और दूसरे द्वितीय श्लोक में जीवात्मा का शरीर का वर्णन है, और वैसे ही थोड़ा कहकर छोड़ नहीं दिया, पूरे पूरा शरीर का वर्णन इस श्लोक में है। जीवात्मा का शरीर इस भौतिक देह से बना हुआ इस शरीर का देवताओं प्रभुपाद इसी प्रथम श्लोक में तात्पर्य के अंत में बताते हैं कि इस तरह देवताओं की स्तुति करने का कारण क्या है। एक तो कारण प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई भौतिकतावादी व्यक्ति सुनेगा कि भगवान कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म धारण किया तो अपने आप समझ लेगा कि उनका भगवान का शरीर हमारी जैसा ही होगा, पंच महाभूत से बना हुआ। तो देवताओं द्वारा यह कथित किया जाता है कि जो भगवान का शरीर जो चिन्मय है, दिव्य है, इस भौतिक जगत से परे है, ऐसा ये जीवात्मा का शरीर ऐसा नहीं होता है। ठीक उनका विपरीत होता है, भगवान का शरीर चिन्मय होता है, उस भौतिक गुण से परे होते हैं, उनको कुछ कष्ट अनुभव नहीं होता है और दिव्य शरीर रहता है भगवान का। और ठीक उसका विपरीत इस मनुष्य का, इस जीव का, इस देश पृथ्वी से बना हुआ शरीर है। उसमें सर्वप्रथम कहते हैं देवताओं, अयम आस यह शरीर, ये शरीर कैसा है? तो इसमें कहते हैं असो अष्टकम, पंच रस, सर्वप्रथम पंच रस कहा जाता है, चतुर्रस है, चतुर्रस जो चार प्रकार के रस इस शरीर प्राप्त करके हमें लालसा होती है, चार प्रकार के रस प्राप्त करने की। उसमें सर्वप्रथम है अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस शरीर प्राप्त करके जैसे ही व्यक्ति को ज्ञान होता है तो उनको तुरंत लालसा होती है कुछ धर्म करके कुछ अर्थ कमाना। प्राय आज तो देखा जाता है कि धर्म करके अर्थ नहीं कमाते, धर्म करके ही अर्थ कमाते हैं, लेकिन वैदिक शास्त्र में कहा गया है सर्वप्रथम व्यक्ति को धर्म करना चाहिए और धर्म करने के बाद उस धर्म से जो अर्थ मिलता है उसे अपनी कामना पूर्ण करनी चाहिए। जो इच्छा होती है इस भौतिक जगत में जीव आया है कुछ भोग करने के लिए, तो धर्म करके अर्थ कमाना चाहिए और अर्थ से काम की तृप्ति करना चाहिए। प्राय अर्थ से ही काम की तृप्ति होती है और साधु संत कहते हैं कि ज्यादा अर्थ या ज्यादा धन आने से व्यक्ति का मद बढ़ जाता है और मद बढ़ने के कारण वो और इस भौतिक जगत में फंस जाता है। लेकिन जो धार्मिकता से धन कमाया हुआ व्यक्ति के पास रहता है तो निश्चित रूप से उस अर्थ से उस इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन वो साथ साथ में उसमें लिप्त नहीं होते हैं। भगवान की कृपा से, भगवान की सेवा भी उसमें होते, धर्म अर्थ, धर्म से कमाया हुआ अर्थ से, उस अर्थ से भगवान की सेवा भी होती है और साथ साथ में थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति के लालसा होने के कारण इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन उससे यह भी ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें इसमें फंसना नहीं है, मोक्ष भी प्राप्त करना है। तो धर्म करके करके अर्थ कमाया कमाना है और अर्थ कमा के जो भोग की इच्छा है उनको तृप्त करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है, फिर बाद में मोक्ष की कामना करते हैं। प्राय मोक्ष लोग समझते और वैदिक शास्त्र में कहा गया है मोक्ष को लोग स्वर्ग प्राप्ति की बताते हैं। इस धर्म रूपी अर्थ से व्यक्ति ज्यादा करके प्राय यज्ञ दान करते हैं। वैदिक काल में यज्ञ करते थे और आज के समय में प्राय पाप से मुक्त होने के लिए व्यक्ति दान करता है और वो सोचता है कि मैं जब दान करूंगा तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पाप का फल उनको भुगतना पड़ता है और जो दान करता है, पुण्य करता है, वो उनका फल रूप उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो उसको वैदिक शास्त्र में मोक्ष कहा गया है। वास्तव में मोक्ष वो मोक्ष नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ कहा है इस श्लोक में, पंच चतुर्रस। तो मोक्ष का सब अर्थ वहां स्वर्ग तक की है। वास्तव में मोक्ष जो भगवान भगवत प्राप्ति है इस भौतिक जगत से छूटने का, वो मोक्ष की बात इधर नहीं हो रही। तो चतुर प्रकार के रस प्राप्त करके व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहता है और दान पुण्य करके स्वर्ग तक जा सकता है। फिर बाद में पंचविध षड आत्मा, पांच प्रकार के ज्ञान वो भोग किससे करते हैं व्यक्ति? तो पंचविध जो पांच प्रकार के हमारे ज्ञान इंद्रिया है उससे व्यक्ति भोग करता है। सर्वप्रथम श्वसा चमड़ी, श्वसा से स्पर्श करने की इच्छा होती है। दूसरा आँख देखने की इच्छा होती है। तीसरा कान सुनने की इच्छा होती है, चौथा नासिका सुगंध प्राप्त करने की इच्छा होती है, और पांचवा मुख स्वाद लेने की इच्छा होती है। इस पांच प्रकार की भौतिक कर्म इंद्रियों से व्यक्ति या जीव कोई आनंद प्राप्त करने की इच्छा होती है, और इस पांच कर्म इंद्रिया, फिर बाद में पांच ज्ञान इंद्रिया भी है, फिर बाद में उस कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया और यह शरीर किससे बनता है, तो अष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच महत्त्व है, और उन साथ साथ में मन बुद्धि और अहंकार, इस आठ प्रकार की अष्टधा आठ प्रकार के तत्व से इस भौतिक शरीर बनते हैं। इस भौतिक शरीर आठ प्रकार से बनते हैं और उसमें नौ द्वार होते हैं। नौ द्वार, दो आंखें, दो नासिका, दो कान और एक मुख सांस और एक गुह्य इंद्रिय और एक जननेन्द्रिय, ये नौ द्वार इस शरीर में है। और दस प्रकार के प्राणवायु रहते हैं, प्राण सनक जो जीवित रहते हैं, चेतना हमारी शक्ति है और प्राण वायु के आधार पर वो दस प्रकार के होते हैं, और साथ साथ में इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। और इसकी रूपक तरीके से इस श्लोक में वृक्ष की उपमा दी गई है इस शरीर को, तो इस शरीर को वृक्ष की तरह इस शरीर बना है, और ये शरीर आत्मा बदलता रहता है, लेकिन इस शरीर आदि है, कई कालों से इस भौतिक शरीर में ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो उसी में कर्म के अनुसार व्यक्ति शरीर प्राप्त करता है, और इस शरीर प्राप्त करके उनको दो प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, सुख का और दुख का। कभी कभी सुख प्राप्त होता है कर्म के अनुसार, और कभी कभी उनको कर्म अनुसार दुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये देवताओं द्वारा इस शरीर की रचना का वर्णन करते हैं, तो वास्तव में जो भगवान का शरीर है उनसे बिल्कुल विपरीत ये व्याख्या है इस भौतिक शरीर का, और साथ साथ में इस शरीर का पूर्ण रूप से अगर हमको जानकारी चाहिए तो श्रीमद् भागवत में स्वशास्कंड में 25 अध्याय से 29 अध्याय तक पांच अध्यायों में उनका वर्णन है पूरी तरह से इस शरीर का। चौथा स्कंध 25 से 29 तक श्री नारद जी प्राचीन बृहस्पत को इस शरीर के बारे में बताते हैं। उस पांच अध्याय में पूर्ण रूप से किस तरह इस शरीर का निर्माण होता है, किस तरह इस भौतिक जगत का आविर्भूत है, और किस तरह एक एक जो हमारी ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया किस किस दिशा में है, उस पूर्ण रूप से नारद जी वर्णन करते हैं, और एक रूपक देते हैं उनको पुरंदर उपाख्यान, पुरंदर द्वारा, पूर्व मतलब इस शरीर, इस शरीर को उस जगह पर इधर वृक्ष के रूप में उपमा दी है, और श्री नारद जी स्वास्थ्य स्कंध में कहते हैं कि इस शरीर एक पूर्व एक नगर के समान है, और जो उसमें रमण करता है पुरंदर आत्मा उनको रूपक देते हैं पुरंदर उपाख्यान। उस उपाख्यान को इस पांच अध्याय में पूर्ण रूप से विस्तार श्री नारद जी कहते हैं। उसमें भी कहते हैं कि इस शरीर में नौ द्वार होते हैं, और अलग अलग द्वार के द्वारा व्यक्ति किस किस रूप में किस किस तरह इस भौतिक सुख का अनुभव करते हैं और दुख का भी अनुभव करते हैं, और खास करके उस नारद जी वर्णन करते हैं जो एक राजकुमारी है, जो उसका नाम दिया है उस नारद जी ने कालकन्या के रूप में, जो उसको मन के द्वारा मन को कालकन्या के रूप में पूजित करते हैं श्री नारद जी, और पूर्ण रूप से इस आत्मा को ये मन रूपी अपने कब्जे में कर लेता है उस राजकन्या, और उस आत्मा को उस जीवात्मा को पूर्ण रूप से भौतिक जगत में इसी तरह नसाते हैं जिस तरह कोई सूत्रधार किसी कठपुतली को नसाते हैं, उसी तरह ये मन के द्वारा व्यक्ति इस भौतिक जगत में नाचता रहता है उस काल कन्या के और इस राजकुमारी के इशारे पर। तो इस शरीर का पूर्ण रूप से अगर व्याख्या और जानकारी चाहिए तो वो उपाख्यान पुरंजन उपाख्यान देखना चाहिए भक्त को। हमें उसमें नहीं जाना है भी पूर्ण रूप से भी, तो देवताओं जिस स्तुति करते हैं इस स्तुति में हम देखते हैं कि ठीक विपरीत ये दूसरा श्लोक में देवताओं का वर्णन है। तो हमें यह प्रश्न होना चाहिए कि जीवात्मा को इस शरीर में क्यों डाला जाता है, क्यों डालते हैं, किस कारण इस जीवात्मा को इस शरीर में डालते हैं। तो इसका उत्तर और इस प्रश्न ऐसा ही प्रश्न श्री सनातन गौस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से बनारस वाराणसी में। जब सनातन गौस्वामी नवभूषण साथ से कैद से रिहा होकर जंगल मार्ग से जब बनारस पहुंचते हैं और चैतन्य महाप्रभु से भेंट करते हैं, तब सनातन गोस्वामी अपने आप को दीनता प्रकट करते हुए कहते हैं कि आमी के मतलब मैं कौन हूँ, किस कारण हमें तीन प्रकार का दुख प्राप्त होता है, किस लिए। आमी की का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ, अगर हमें कोई पूछे कि आप कौन है तो हम तुरंत जवाब देते हैं कि तत्ववेता दास है, मेरा नाम तत्ववेता दास है, या किसी कोई भी पूछते हैं कि आप कौन है तो तुरंत उसने भौतिक पहचान बताते हैं। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी प्रश्न नहीं कर सके आमी की मैं कौन हूँ, वो तो बहुत बड़े विद्वान थे सनातन गोस्वामी, कहा जाता कि उसी समय विद्वान में प्रखंड विद्वान थे सनातन गोस्वामी, थोड़ी सी बात समझ कर वो पूरा प्लान वो पूरा बात समझ जाते थे। उसी विद्वत्ता के कारण ही राजा नवाब हुसैन शाह ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया था। एक बार राजा हुसैन साहब उनके सेनापति के साथ परिभ्रमण करते करते एक गांव में आए, मोर गांव, बंगाल में जो गांव है मोर नाम का गांव, उसी गांव में आए वो नवाब हुसैन साहब अपने सेनापति के साथ। तो वहां एक बहुत शिल्पकारी खंभा था, वो गिर गया था टूटकर। तो उनके साथ तो उनका सेनापति था, उनका नाम हिंगा था, हिंगा। तो नवभूषण शाह ने कहा तुम इस दिशा में जाओ, उस शिल्प खंभा को देख कर उस हिंगा को सेनापति को कहा तुम इस दिशा में जाओ। तो बादशाह का आज्ञा था, वो तो पूछ नहीं पाए कि मुझे क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो तो सेनापति वहां से चले गए। और उस दिशा में जाते हुए एक गांव आया जो राम के लिए गांव, तो उस गांव में वो हिंगा परिभ्रमण करने लगा, घूमता रहा उस गांव के चारों तरफ। तो उसी समय सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इस चबूतरा पर बैठे थे और एक अश्व लेकर घूम रहा था। तो तीन चार बार घूमते घूमते वहां से आया तो सनातन गोस्वामी ने देखा ये क्यों बार बार इधर घूम रहा है, उसका कुछ प्रयोजन लगता है। तब उसने पूछा उस सेनापति से आप क्यों इधर घूम रहे हो, क्या कारण है। तब उस हिंगा ने कहा, सेनापति ने कहा कि मैं और हमारा नवाब शाह एक साथ घूम रहे थे, तो उसने मुझे आज्ञा दिया कि इस तरफ आप जाओ, लेकिन कुछ बताया नहीं कि मुझे कुछ जाकर क्या करना है और किस दिशा में जाना है और किस प्रयोजन से, कहा मुझे कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मैं ऐसे घूम घूम कर घूम रहा हूँ। अगर मैं वापस गया, अगर वो क्रोधित हो गया तो मुझे सजा दे या कारागार में डाल देगा और मृत्यु सजा भी दे सकता है, कुछ बादशाह का कुछ ठिकाना नहीं है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा आप किस स्थिति में आपने आज्ञा आपको आज्ञा दी उस बादशाह ने, वो बताया थोड़ा वर्णन कीजिए। तब उस हिंगा ने कहा कि हम लोग उधर से गुजरे तब एक खंभा बहुत शिल्पीकार खंभा था वो गिर गया था और उसको देखकर मुझे तुरंत बादशाह ने आज्ञा दी। तब सनातन गोस्वामी समझ गए कि बादशाह ने क्यों आज्ञा दी। तब उसने कहा इसी गांव में बहुत सारे शिल्पीकार रहते हैं, तो इसी उसने पता बताया कि इस पर जाइए आप, वहां से शिल्पी लेकर आप जाइए। तब वो हिंगा उसके घर पर गया और दो शिल्पीकार जो प्रख्यात शिल्पीकार थे उनको लेकर वो बादशाह के पास गए और कहा कि आपने जो आज्ञा दिया तो उसका पालन किया। तब नवभूषण शाह ने कहा कि आपको ये आपके बुद्धि काम नहीं किया है, क्योंकि आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आज्ञा दिया था लेकिन पूरा नहीं दिया था और आपने पूरा पालन किया है इस आज्ञा को, तो कौन बताया इस बात को ये मुझे बताओ। तब उस हिंगा ने कहा कि मैं रामकिले गाँव में गया था, वहाँ एक सनातन नाम के, उस टाइम तो सनातन नहीं था, दबीर खास और साकरमली भी नहीं था, और अमर और संत संतोष रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का नाम था। तो सनातन गोस्वामी का नाम अमर था, तो उसे बोला उस गांव में एक अमर नाम का व्यक्ति था, उसने मुझे ये निर्देश दिया और कार्य पूर्ण करा। तब उस बादशाह ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ, और बादशाह ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो इतना बुद्धिमान थे श्री सनातन गोस्वामी। वो यहाँ प्रश्न करते चैतन्य महाप्रभु से कि आमी के मैं कौन हूँ, कहने जार तापत रहे, पर इसलिए मुझे इस भौतिक जगत में दुख मिलता है। तो उसी प्रश्न, दो प्रश्न सनातन गोस्वामी करते हैं, तो उसी में उस प्रश्न का जवाब श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं। कि सर्वप्रथम आमी के नो जवाब देते हैं कि जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण रे तथा शक्ति वेदाबद्ध प्रकाश। वास्तव में जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास होना, और जब ये दासत्व भूल जाते हैं जीव, तब इस भौतिक जगत में आते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं कृष्ण बोली छे जीव अनादि बहर मुख, अते एवं माया तारे देही संसार दुख। कृष्ण को भूल जाते हैं जब ये जीव, तब तुरंत उनको माया पकड़ लेती है और संसार के दुख प्रदान करते हैं। जो इस देवता इस शरीर की बात करते हैं, उस शरीर में माया डाल देते हैं। और वहां तक कहते हैं श्री जगदानंद पंडित अपने प्रेम विवर्त ग्रंथ में कि कृष्ण बोली से ही जेव भोगवंसा करे, अतएव माया तारे जापटिया धरे। तो कृष्ण जब कृष्ण को भूल कर जब जीव भोग की इच्छा करता है, तुरंत उनको माया झड़प से पकड़कर उनको इस भौतिक जगत में डाल देती है। तो सनातन गोस्वामी का इस प्रथम प्रश्न का आमिकी का जवाब श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं कि जीवेरे स्वरूप है कृष्ण दास, आप ये भौतिक शरीर में हैं, इस भौतिक शरीर में आप इस देश का, इस राष्ट्र का, इस गांव का, इस स्कूल का नहीं है। आपका स्वरूप है जीवेर का, जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ममे वंश जीव लोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा अंश है, अंश होने के कारण कोई परमात्मा ईश्वर का दास भी है। तो प्रथम प्रश्न का जवाब श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं, और दूसरा कहते हैं, दूसरा प्रश्न का जवाब यही है कि आमे के जार तापत रहे, तीन प्रकार का दुख क्यों मिलता है। तो कृष्ण बोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देही संसार दुख। कृष्ण को भूल जाता है तब माया पर कभी तीन प्रकार के ताप देते, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के ताप शास्त्र में कहा गया है, और साथ साथ में श्री प्रभुपाद कहते हैं चार प्रकार के और उनको दुख प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। कुल मिलाकर इस भौतिक शरीर जब जीवात्मा धारण करता है तो उनको सात प्रकार के दुख प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये सात प्रकार के दुख इस भौतिक जगत में आते हैं, और उनको कर्म के अनुसार उनको कई प्रकार की योनियां और कई प्रकार का सुख और दुख का अनुभव होता है। जिस तरह कभी स्वर्ग उठाए कभी नर के डुबाए, दंडे यने धने राजा नदी से सुबाए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसी प्रकार इस माया रूपी इस जीवात्मा को कष्ट देते हैं। जिस तरह कभी उनको स्वर्ग में उठा दे कर्म के अनुसार, और कभी नरक में डाल देती है पाप कर्म के कारण। और जिस तरह पूर्व समय में, पहले के समय में जब राजा कोई कैदी अपराधी को सजा किस तरह देते थे, जब उस कैदी को 20 नदी के किनारे ले जाते थे नाव में बिठाकर, और उनको बाल पकड़कर पानी में डुबाते थे, और पानी में डुबाते जब तड़फड़ता था तब उनको थोड़ा सा बाहर निकालते थे और फिर श्वास लेता था, फिर श्वास लेते फिर बाद में उनको फिर से डुबाते थे। उसी तरह माया इस भौतिक जगत में जीव को तड़पा तड़पा कर दुखी करती है। कभी कभी उनको स्वर्ग देती है या इस भौतिक जगत को थोड़ा सुख प्राप्त होता है तो व्यक्ति मान लेता है कि मुझे सुख प्राप्त हो गया, लेकिन वास्तव में यह सुख नहीं है, वो दुख का थोड़ा निवृत्ति मात्र है। जिस किसी व्यक्ति के सिर पर 50 किलो बोझा रहता है उसमें 10 किलो कम किया जाए 40 किलो रहता है तो वो सोचने लगता है कि हमारे सर पर जो बोझा था कम हो गया, वो सुख अनुभव करता है, लेकिन ऐसा सुख नहीं है, वो 40 किलो उसके सर पर बोझा है ही, 10 किलो कम हुआ है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में सुख मात्र लगता है, लेकिन वास्तव में इस भौतिक जगत में सुख है नहीं, क्योंकि भगवान ने दुख देने के लिए इस भौतिक जगत बनाया, दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने के लिए इस भौतिक जगत को भगवान ने निर्माण किया है। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जीव आता है तो कई प्रकार के उनको कष्ट प्राप्त होता है, ये शरीर के कारण, और इस शरीर में शरीर के कारण इसमें दो फल लगते हैं, सुख का और दुख का। जो सुख और दुख अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होता है, कोई व्यक्ति सोचता है कि कई लोग बहुत पाप करते हैं लेकिन फिर भी सुखी दिखाई देता है, धनी लोग प्राय दुखी रहता है लेकिन दिखने में आता है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है और बड़ा बड़ा मकान में रहते हैं तो लगता है कि वो सुखी है, और पाप कर्म भी लोगों के सामने दिखता है लेकिन वो पाप कर्म होते हुए भी वो सुख उनको कुछ संपत्ति प्राप्त होता है। क्यों होता है कि उनको पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म के कारण उनको इस भौतिक इस जन्म में कुछ सुख प्राप्त होता है। और इसी तरह अभी देखा जाता है कोई कोई व्यक्ति एक सज्जन रहता है, सदाचारी रहता है, फिर भी उनको कष्ट प्राप्त होता है, देख देख बहुत दुखी होता है, उनके जीवन में कई प्रकार की विपदा आती है, तो वो भी पूर्व जन्म का कुछ पाप या गलत कार्य के परिणाम स्वरूप उनको ये कष्ट प्राप्त होता है। लेकिन उस दोनों स्थिति में व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो उसको समझना चाहिए ये दोनों स्थिति सही नहीं है। अगर वो सुख दिखता है कुछ धन प्राप्त होता है ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो उनको सोचना चाहिए कि पिछले जन्म में जो हमने पूर्व कर्म किया है पुण्य कर्म किया है उसको हम अभी खर्च करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और व्यक्ति को चाहिए वो बुद्धिमान होता तो समझता कि अपना बैंक बैलेंस जो रहता है वो खर्च उड़ा देता है तो बाद में उनको कष्ट ही प्राप्त होता है, तो उनका ही बैंक बैलेंस ही होता है ये पिछले पूर्व जन्मों का फल रूपी जो पुण्य कर्म किया है, तो इस जन्म में उसको नष्ट करता है या खर्च करता है। और जो कष्ट अनुभव करते हैं वो पिछले जन्म का अधर्म कार्य किया है तो वो कष्ट अनुभव करता है, तो उनको हर्षित होना चाहिए कि हम पूर्व जन्म में जो कर्म हम गलत कर्म किया है उनका कष्ट में भोग कर वो काटता हूँ, फिर बाद में अपने बुद्धि से समझ कर शास्त्र से समझ कर उनको पुण्य कर्म में लग कर भक्ति कार्य करना चाहिए ताकि वो अगला जन्म सफल बना सके इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके। तो इसी तरह व्यक्ति को चाहिए कि इस दो फल जो प्राप्त होता है उनको सुख और दुख रूपी तो उनको किस तरह मेंटेन करना चाहिए वो बुद्धि से उनको शास्त्र से जानकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और दूसरा प्रभुपाद खास इस साथ कहते हैं कि इस भौतिक शरीर जो है उसमें दो पक्षी है, एक आत्मा और एक परमात्मा। जो वैज्ञानिक लोग प्रभुपाद के तात्पर्य में हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ये इस बात को समझ नहीं पाते हैं, वो समझते हैं कि जो आत्मा है वो इस शरीर में एकत्व हो जाते हैं और परमात्मा को तो वो मानते ही नहीं है। जो शरीर नष्ट होने से साथ साथ ये आत्मा भी नष्ट हो जाता है, ऐसा भौतिकतावादी जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते ऐसे बात नहीं है, ये मूर्ख लोग ऐसा जानते हैं मानते हैं, और वो साथ साथ में वो लोग उदाहरण देते हैं कि जिस तरह एक हरा वृक्ष में कोई हरा पक्षी बैठ जाता है तो उसमें विलीन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हरा वृक्ष में हरा पक्षी बैठता है तो अस्तित्व उस पक्षी का अस्तित्व रहता ही है, वो दूर से दिखाई देता है कि पक्षी उसमें विलीन हो गया और दृश्य मान नहीं होता है, लेकिन उनका अस्तित्व रहता है। और साथ साथ में दूसरा भी जो मायावादी है वो भी उदाहरण देते हैं, जिस तरह समुद्र में नदी मिट जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है, उसी तरह जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। तो वो भी बात गलत है। और इसमें भी उदाहरण देते हैं एक पहाड़ का, पर्वत का, दूसरे में लगता है कि पर्वत हरा हरा भरा है, लेकिन उसके नजदीक जाएंगे, उसके नजदीक जाएंगे तब मालूम पड़ेगा उसमें सारे वृक्ष है। और नजदीक जाएंगे तो उसमें पता चलेगा कई सारे पक्षियां हैं। और नजदीक जाएंगे तो उसमें पता चलेगा कई सारे जानवर भी हैं। और नजदीक जाएंगे तो इस पर्वत से पता चलेगा उसमें पूरे जीवात्मा से भरा हुआ कीड़े पक्षी पक्षी कई कई कीटाणु है। लेकिन दूर से लगता है पूरा हरा भरा एक वृक्ष पर्वत है, लेकिन जब नजदीक से देखते हैं तब पता चलता है कि उसका क्या वास्तविक स्थिति है। तो उसी प्रकार जब इस शास्त्र से हम देखते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग है, ये दो पक्षी रूपी है, जब इस देहात्मा रूपी शरीर में जो आत्मा रूपी पक्षी है उस शरीर का भोग करता है और उसका सुख दुख का अनुभव वो पक्षी करता है, और जो परमात्मा रूपी पक्षी है वो उस अनुमंता दृष्टा भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उस पक्षी क्या करता है उसका खाली निरीक्षण करते हैं, वो देखते हैं और सोचते हैं कि वो जीवात्मा रूपी पक्षी कब मेरे सामने देखेगा। उसी प्रकार इस शरीर रूपी वृक्ष में आत्मा और परमात्मा दो खग दो आकाश में विचरण करने विराजमान रहते हैं, वो नित्य है, इसका नाश नहीं होता है, वो सनातन है, और शरीर नष्ट हो जाता है। तो शरीर नव कई प्रकार से यह बना हुआ या पूर्ण रूप से विवरण इस श्लोक में देवता लोग करते हैं, और पूर्ण रूप से जो प्रथम श्लोक से विपरीत यह श्लोक है, और इसी श्लोक के कारण यह सार रूप में दो श्लोक है। प्रथम श्लोक जो है वो परमात्मा भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, और दूसरा यह श्लोक सार रूप में इस जीवात्मिक स्थिति बताते हैं, और उनका पूरा विवरण आगे जाकर हम सुनेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह देवता लोग धीरे धीरे के ऊपर परमात्मा का भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं। इस 17 श्लोक में आगे 15 श्लोक में देवताओं की स्तुति है, बहुत पूर्ण रूप से और सुंदर रूप से देवताओं इस 2 श्लोक का भावार्थ हम आगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तब मालूम पड़ेगा। जब प्रथम काल हमने श्लोक सुना किस तरह भगवान सत्य है, उनका नेत्र किस तरह सत्य है, किस तरह वो आनंद रूप है, किस तरह वो परम है, वो सब विवरण आगे श्लोकों में आएगा। लेकिन गुप्त रूप से अगर ध्यानपूर्वक अगर प्रभुपाद का तात्पर्य हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि इस प्रथम श्लोक का भावार्थ आगे आ रहा है। तो इसी तरह सुंदर रूप से ये देवताओं द्वारा स्तुति, जो भगवान शिव भी साथ में है, भगवान ब्रह्मा है, नारद जी है, व्यास देव है, सभी मिलकर भगवान जो अभी प्रकट नहीं हुए माता देव के गर्भ में है, उस गर्भ अवस्था में भी देवताओं भगवान की स्तुति करने के लिए ये मधुपुरी में पधारे हैं, इस कंस के कारागृह में। तो हमें चाहिए कि पूर्ण रूप से और इस स्तुति का श्रवण करें ताकि भगवान कृष्ण की वास्तविक स्थिति जान गए तो हम निश्चित रूप से इस भौतिक जगत से छूट सकते हैं। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म समय दिव्यम यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनः जन्म नेति मामिति अर्जुन। तो इसी बात को इस देवताओं कहते हैं कि जब भगवान का जन्म और कर्म किस तरह दिव्य है, जो कोई व्यक्ति तत्व से जानेगा तो इस भौतिक जगत से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इस तत्व का जानना मतलब है इस देवताओं की स्तुति को पूर्ण रूप से समझना, तभी हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे। तो मुख्य रूप से इस कारागृह में देवताओं द्वारा द्वितीय श्लोक जो बिल्कुल विपरीत, लेकिन आगे जाकर जीवात्मा और परमात्मा का भगवान कृष्ण का वर्णन करते हुए देवताओं किस तरह आगे भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं वो आगे हम श्रवण कर पाएंगे। और प्रभुपाद की कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त होता कैसा तत्व से जानने का, और इस देवताओं के द्वारा स्तुति जो हम भागवत श्रवण करते हैं, अन्य जो इस्कॉन के बाहर जो भागवत होता है तो उसमें ऐसी तत्व की यार ऐसी स्तुति या सब कुछ उल्लेख ही नहीं करते वो लोग। ये प्रभुपाद की कृपा है इस भौतिक जगत पूरे समाज पर ताकि भगवान को पूर्ण रूप से जान सके। तो हमें पूर्ण श्रद्धा से अगर हम भगवान कृष्ण को तत्व से जान पाएंगे तो निश्चित रूप से इस भौतिक जगत से छूटकर भगवत धाम प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस देवता द्वारा स्तुति बहुत सिद्धांतिक है, ये तो विद्वान वक्ता ही इस पर वर्णन कर सकता है। विशेष करके मैं तो कहता हूँ कल का श्लोक आज का श्लोक तो मनुष्य प्रभु के द्वारा होना चाहिए, लेकिन वो तो मायापुर है, पूर्ण रूप से वही उन पर चर्चा कर सकते हैं। हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, पता नहीं क्या उसे, लेकिन जो भी कुछ प्रभुपाद के भाव से सुना था वो आप लोगों ने प्रस्तुत किया आपके लोगों के सामने। कुछ टूटे कुछ गलत हो गया हो कुछ उच्चारण में तो हमें क्षमा कीजिए, धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो हरिदास प्रभु से पूछिए, वो तत्व के बारे में या तत्व से जानते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हरिदास प्रभु से। श्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद महाराज की इतना ही और प्रेमानंद है।